ओम शांति। बाबा के बेहद घर में आप सभी बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए विशेष साउथ की धरनी से बाबा के घर में पधारे हैं और बाबा अपने बेहद घर में बेहद के बच्चों का स्वागत भी करते और साथ साथ वरदानों से, दुआओं से, शक्तियों से श्रृंगार भी करते हैं। आप सभी बाबा के घर में सहज योगी जीवन का अनुभव स्वतः कर रहे होंगे। बाबा के घर में योग लगाने की मेहनत करनी पड़ती है कि सहज लग जाता है? सभी सहज योगी हैं, समझ रहे हैं भाषा हमारी हिंदी? सहज योगी जीवन एक दो घंटे वाली योगी जीवन नहीं, लेकिन स्वतः और निरंतर योग, सहज योग, जो हमारा जीवन ही योगी बन गया। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। योग शब्द भी क्यों प्रयोग करते हो? तुम मुझे याद करो बस। बुद्धि से बाबा की याद में रहना, सर्व संबंध बाबा से जोड़ करके रखना। भक्ति में तो सिर्फ कहते थे तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, लेकिन संगम युग पर ये भाग्य हम सभी प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। बाबा के साथ हम सबके सब संबंध हैं। निराकार बाबा को हम सिर्फ बाबा ही कहते, लेकिन संगम युग पर जब वो निराकार साकार तन का आधार लेते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला संबंध मात पिता के रूप में हम सबका जुटता है। हम सभी ब्रह्मा मुख से नया जन्म प्राप्त करते हैं, अलौकिक जन्म मिलता है। शिव बाबा पिता है, लेकिन ब्रह्मा माँ के द्वारा हम सबको एक अलौकिक नया जन्म, द्विज जन्म, दूसरा जन्म है। इस मर्जीवा जन्म को सर्वश्रेष्ठ जन्म कहा गया है। अभी हम शूद्रपन के सभी संस्कारों को भूलकर अलौकिक नए जन्म के दिव्य संस्कार धारण कर रहे हैं, ब्राह्मण जीवन के दिव्य संस्कार धारण कर रहे हैं। तो मात पिता के रूप में बाबा ने हम सबको दिव्य और अलौकिक जन्म दिया, साथ साथ पालना भी इतनी श्रेष्ठ दे रहे हैं। साकार में जब तक रहे तब तक साकार बच्चों को साकारी रूप से पालना मिली, लेकिन अव्यक्त होने के बाद भी आज 38 वर्षों से बाबा की अव्यक्त पालना में हम सभी पल रहे हैं। सभी को अव्यक्त पालना का अनुभव है, कैसे बाबा सकाश से, शक्तियों से, वरदान से, अपने मधुर महावाक्यों से, दिव्य मिलन द्वारा भी शक्ति भर करके हम सब की अलौकिक पालना कर रहे हैं। तो जन्म भी हम सबको बाबा के द्वारा मिला और पालना भी अव्यक्त रूप में भी साकार का अनुभव कराते हुए बाबा हम सब की पालना भी कर रहे हैं। शिक्षक के रूप में इतनी सुंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत की, पूरे 84 जन्मों की, तीनों कालों की, तीनों लोकों की पूरी नॉलेज बहुत स्पष्ट रीति से, मुझाने वाली नहीं। भक्ति के अंदर जो ज्ञान हम सबने सुना, कई बार स्पष्ट न होने के कारण कभी आत्मा ही परमात्मा मान लिया, कभी परमात्मा को सबके अंदर व्यापक कह दिया, कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है तो कभी कहते वो सबके अंदर है। ज्ञान था लेकिन वो ज्ञान अटपटा था और हम सब की उससे सदगति नहीं हुई, लेकिन नीचे ही उतरते आए। बाबा ने हम सबको बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ाया, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका असली घर क्या है, कैसा है और कैसे इस सृष्टि मंच पर सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरे चक्र में तुम सबने पार्ट प्ले किया। पूरा ही विस्तार से एक एक बात बहुत अच्छी तरह से बाबा ने हम सबको समझाई और पढ़ाई है। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे इस संगम युग पर अपने आप को कहते हैं कि हम सभी त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, मास्टर हैं। जो ज्ञान बाबा के पास है बच्चों को बाबा ने शिक्षक के रूप में पढ़ा दिया, और एक एक को पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट नहीं बनाया लेकिन मास्टर शिक्षक बना दिया। कोई छोटे से छोटे गांव का रहने वाला भी हो जिसे बाबा का ठीक ठीक परिचय प्राप्त है, जिसे निश्चय है कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है, वो बिना सेवा के रह नहीं सकता, वो दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं सकता। कैसे भी अपनी भाषा में भी दूसरों को ज्ञान जरूर देता है। तो शिक्षक के रूप में बाबा ने हम सबको नॉलेज फुल बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। और सतगुरु के रूप से इतनी श्रेष्ठ मत, हर बात की श्रीमत दी है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको ये पता न हो कि बाबा ने इस बात के लिए, इस कर्म के लिए श्रीमत दी है या नहीं। हर एक को, चाहे वो प्रवृत्ति में है, चाहे वो अकेला है, कुमार है, कुमारी है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कोई भी कर्तव्य कर रहा हो लौकिक दुनिया में, बाबा ने एक एक बच्चे को श्रेष्ठ मत दी, जिसको बाबा कहते हैं श्री मत, श्रेष्ठ मत, जो बाबा की मुरलियों में हम सबको रोज पढ़ने को मिलती है। तो सतगुरु के रूप में अभी तक श्रीमत मिल रही है, और जो जितना सतगुरु की आज्ञा को सिर माथे रख कर हाजी करके पालन करते हैं, कहते हैं गुरु की आज्ञा सिर माथे, जो कुछ गुरु ने कहा है, सतगुरु ने कहा है, उसको हम सभी टाल नहीं सकते। तो बाबा ने सतगुरु के रूप में इतनी श्रेष्ठ मत दी है, जिस मत पर अगर हम सभी यथार्थ रीति से चलते हैं, अमृत वेले से रात्रि तक, सवेरे सवेरे उठने की श्रीमत है कि बच्चे आंख खुलते ही सवेरे पहले पहले नंबर में बाबा को सामने देखो और बाबा से प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग, श्रीमत दी है ना बाबा ने। और सवेरे आंख खुलते ही जब बाबा के साथ मिलन होता है, गुड मॉर्निंग होती है, बाबा की शक्ति प्राप्त होती है। और सर्व संबंधों से अगर हम बाबा को प्यार से याद करते हैं तो निरंतर और सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। केवल एक संबंध है तो याद स्थायी नहीं रह सकती, कभी जरूरत पड़ती है माँ की, कभी पिता की, कभी शिक्षक की, कभी गुरु की, कभी बच्चे की, कभी साथी की, या कभी भाई की, कोई भी संबंध जो लौकिक दुनिया के अंदर जरूरी माने गए हैं। संगम युग पर बाबा कहते, बच्चे तुम अपने सब संबंध एक मेरे से जोड़ लो, क्योंकि यही एक संगम का समय है जिसमें भगवान अपने बच्चों को हर संबंध की भावना देते हैं, हर संबंध से प्यार देते हैं, हर संबंध से साथ निभाते हैं। और अगर कोई भी संबंध हमने बाबा से नहीं जोड़ा तो उस संबंध में कमी होने के कारण हमारी बुद्धि किसी भी देहधारी में भटक सकती है, अटक सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय किसी भी देहधारी को अपना कोई भी संबंधी नहीं बनाना। क्यों? क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि ये समय है सबके हिसाब किताब चुकतू होने का, वापस घर जाने का समय है। इसलिए कोई से, कोई भी संबंध से नया हिसाब किताब न बने, सर्व संबंध एक बाबा के साथ हूँ, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातें करूं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही से सब संबंध निभाऊं। संगम युग पर अगर हम सभी बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़ करके रखते हैं और उन संबंधों का रस लेते हैं, उन संबंधों के आधार से जो लौकिक दुनिया के संबंध की जरूरत महसूस की जाती है, अगर हम बाबा को उसी संबंध से, मान लो आज लौकिक में सभी समझते हैं कि एक वारिस से एक बच्चा होना चाहिए, कुल का दीपक होना चाहिए, बहुत से भाई बहनों की, माताओं की विशेष आशाएं रहती हैं कि एक बच्चा तो हो, कुल दीपक कौन बनेगा। और बाबा ने कह दिया कि मैं तुम्हारा कुल दीपक बनता हूँ, वारिस बनता हूँ। अगर तुम इस जन्म में मुझे अपना वारिस बनाओगे तो मैं तुम्हारी 21 जन्मों के लिए बहुत प्यार से सेवा करूँगा, कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। तो संगम युग पर अगर हम सब ने बाबा को अपना वारिस बनाया है, बेटा बनाया है, जैसे लौकिक में बेटे को बहुत प्यार से हर प्रकार की पालना करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको अपना सब वर्षा दे देते हैं, बाबा भी कहता है संगम युग पर तुम मुझे अपना वारिस बना लो, बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी। इसी प्रकार हर संबंध अगर हम बाबा से जोड़ते हैं तो बाबा सच्चे दिल पर साहेब राजी, अगर सच्चाई है हमारे संबंधों में, ऐसे नहीं हम कहें बाबा ही हमारा सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है, जब सहयोग की जरूरत पड़ती है तो हम किसी भी देहधारी को याद करने लगे, उसको पुकारें, उसको बुलाएं तो बाबा किनारा कर लेता है। लेकिन अगर हमारी सच्चाई है, हमारे दिल की भावनाओं में सच्चाई है और संपूर्ण विश्वास है, निश्चय अटूट है, तो बाबा अपने बच्चों को उस संबंध से साथ निभाता है, मिलन मनाता है। और जब जरूरत है हर परिस्थिति में, जैसे आज बाबा ने सवेरे सवेरे मुरली में कहा कि अगर परमात्म प्यार की का विमान है बच्चों के पास, तो कैसी भी विकराल परिस्थिति हो, आप दृष्टि देंगे तो ये आंखें भी आपकी जादू का काम करेंगी, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको साधन मिल जाएगा, आपकी परिस्थितियां दूर हो जाएंगी। केवल परमात्म प्यार, प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को स्वस्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में बदल सकती है। आज बाबा की मुरली में था, क्योंकि जब बाबा की ये मुरली चली थी उस समय इराक पर हमला हुआ था, 91-92 की बात है, और उस समय विदेश से भारत में आने में बहुत दिक्कतें थी, नहीं आ सकते थे, लेकिन बाबा की सीजन थी और विदेशी बच्चों को लगन थी कि मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा बच्चे 24-24 घंटे लाइन में खड़े रहे, लेकिन विजय हो गई, आ गए। प्लेन मिलना, उस समय बहुत ज्यादा टेंशन था, पूरे विश्व में हलचल थी, नई नई शुरुआत हुई थी लड़ाई की, तो प्लेन नहीं मिलते थे, कई रास्ते चेंज हो गए थे, तो भी बाबा के बच्चे उस परिस्थिति को पार करके यहाँ पहुंचे। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा के साथ सच्चे हैं, जिनका दिल से बाबा से संबंध है, प्यार है, उनको कोई भी विघ्न, कोई भी रुकावट, कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती, अपने आप रास्ता निकल आएगा। ये आंखें ही, जिसको दृष्टि इन आंखों से दोगे, ये आंखें भी जादू का काम करेंगी। लेकिन कैसे, उसकी विधि है, जो आज की सारी मुरली बाबा की सुनी सवेरे सवेरे, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहो, जब आपकी कर्मिंद्रियां आपका कहना मानेंगी, जब आपकी कर्मिंद्रियां आपके आर्डर प्रमाण चलेंगी, तब प्रकृति भी आर्डर मानेंगी और व्यक्ति भी आर्डर मानेंगे। ये जादू का काम ये आंखें तभी करेंगी जब आप अपने आसन पर, तख्त पर विराजमान रहेंगे। तख्त नसीब नहीं हो तो कोई भी कर्मिंद्री कार्य नहीं अपना यथार्थ कर सकती, कर्मचारी कहना नहीं मानेंगे। इसलिए हम सबको बाबा ये अभ्यास कराता है। अभी आप सबको इस मधुबन में, शांतिवन में 10-12 दिन रहने का गोल्डन चांस मिलेगा। कम से कम जब अपनी लौकिक जवाबदारियों से आप मुक्त हैं, क्योंकि लौकिक चिंताएं अलग प्रकार की, लौकिक सेवा, लौकिक नौकरी अलग प्रकार की होती है, और बाबा के घर में अगर कोई सेवा भी है तो क्या है, खेल है। सेवा किया, निश्चिंत हो गए, कोई चिंता नहीं है कि ये लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो सेवाएं सब प्रकार की करो, लेकिन निश्चिंत स्थिति का अनुभव और साथ साथ स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव करके देखो। आत्मा कैसे इस अकाल तख्त पर रहती है और अकाल तख्त नसीन बनते बनते और दिल तख्त पर बैठ जाती है, बाबा के दिल तख्त को जीत लेती है। तो यही एक गहरा राज है राजा बनने का, कि संगम युग पर अगर हम अधिक से अधिक समय अपने इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान रहते हैं, अकाल तख्त नसीन होकर के रहते हैं, ये स्मृति कायम रहती है कि मैं इन कर्मिंद्रियों का मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं राजा हूँ, और मैं इस भ्रकुटी की कुटिया में इस तख्त पर विराजमान हूँ, तो इस भ्रकुटी के तख्त पर बैठने से ये स्थूल कर्मिंद्रियां भी अपने आर्डर प्रमाण कार्य करती हैं, और साथ साथ जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, वो भी आर्डर प्रमाण चलने लगते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे क्या करूं, मन भटकता है, अपने आप भटकना उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि आत्मा राजा है, आत्मा मालिक है। तो जो भी दिन यहाँ पर आप सबको मिले हैं, क्लासेज भी खूब मिलेंगी, बाबा भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, सेवा का चांस भी मिलेगा, जितनी कमाई करने चाहो भरपूर हो सकते हो, सब शक्तियों से, सब खजानों से, सब अनुभवों से ये चांस है। इसलिए इस चांस को गंवाना नहीं, जो आज बाबा ने कहा है कि योग करते आ रहे हो लेकिन योग के प्रयोगी बनो, प्रयोग करो, माना योग की जो शक्ति है उसको कार्य में लगाओ। प्रयोग करना माना कोई चीज रखी हुई हो, प्रयोग में ना आती हो, काम में न ली जाती हो, तो रखे रखे भी उसमें जंक लग जाती है। मान लो कोई की गाड़ी हो, खड़ी रहे तो क्या होता है, खड़े खड़े भी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो बाबा कहता है जो तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, गुण है, खजाने हैं, उनको सबको सफल करो, कार्य में लगाओ, और प्रयोग का एक अच्छा एक नया शब्द आज बाबा के वरदान में आप सबने सुना होगा। बाबा ने कहा कि योग का प्रयोग माना प्रगति, है ना, नया शब्द है कि अगर मेरी प्रगति नहीं हो रही है तो मेरा योग ठीक नहीं है। हमने योग को यथार्थ रीति से या तो समझा नहीं है या तो उसको कार्य में नहीं लगाते। इसलिए योग जो हम कर रहे हैं उसका बार बार भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करें। आज तो बाबा ने कहा कि अपने खजानों पर प्रयोग करो, आपके पास जो खजाने हैं संकल्प का, समय का, श्वास का, तन का, मन का, धन का, ये खजाने बाबा ने हम सबको जो दिए हैं, इन खजानों पर योग का प्रयोग करो। और प्रयोग करना माना बढ़ाना, प्रगति करना, वो आगे बढ़ना चाहिए, एक का 10 गुना सफलता प्राप्त होनी चाहिए। मान लो आपके पास तन की शक्ति है लेकिन अगर वो तन की शक्ति व्यर्थ जा रही है, तन की शक्ति को हम यथार्थ रीति से सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तन ठीक है, तंदुरुस्त है, बीमार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अलबेले हैं, सुस्त हैं, सेवा से जी चुराते हैं, कर सकते हैं फिर भी नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे, अलबेलापन। और ऐसी अलबेली आत्माएं प्रगति नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते जो शक्ति तुम्हारे पास है, तन की शक्ति है तो उसको कार्य में लगा करके कम समय में अच्छे से अच्छा काम करके दिखाओ। ऐसे नहीं बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत मेरे पास काम है, कईयों के पास काम थोड़ा होता है लेकिन दिखाते बहुत हैं, ऐसा लगता है उन जैसा बिजी कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अगर उसको टाइम टेबल प्रमाण किया जाए, सबको बाबा ने कहा है 8 घंटे कर्म की छुट्टी है, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटे काम करो, खूब अच्छी तरह से दिल से करो। और कोई भी अगर दिल से मेहनत से 8 घंटे अच्छी तरह से तन से सेवा करे, बुद्धि लगा करके करे, तो बहुत सा कार्य सहज रीति से पूरा कर सकता है। अगर दिनचर्या को इन तीनों भागों में जो बाबा ने कहा कि 8 घंटा शरीर के लिए रेस्ट वगैरह करते हो उसके लिए दो, 8 घंटा कर्मणा सेवा के लिए दो और 8 घंटा मेरे लिए दो, 24 घंटे की दिनचर्या को 3 भागों में बांट दो। 8 घंटा मेरे लिए दो माना ऐसा नहीं 16 घंटा अपने लिए ले लो, वो 16 घंटा भी बाबा की याद में व्यतीत हो, लेकिन कम से कम 8 घंटे एक लक्ष्य बना लिया जाए। आज मैं सोच रहा था, सवेरे सवेरे चक्कर लगा रहा था, हमने कहा सबको शायद ही ऐसा कोई हो जिसको 4 से 8 सवेरे का ये 4 घंटा न मिलता हो। बहुत कोई ऐसा बिजी हो, नाइट ड्यूटी हो या बहुत कार्य करता हो, समय न मिलता हो, लेकिन 4 से 8 घंटे जो सुबह का 4 घंटे का समय है, अगर उसको भी ठीक तरह से हम मैनेज करें, भले शारीरिक क्रियाएं, स्नान पानी करना होता है, लेकिन वो 4 घंटे हमारे अगर सफल हो जाते हैं सवेरे सवेरे, तो वो 4 घंटे बाबा की साथ के अच्छे अनुभव, उसमें रूह रिहान, उसमें मनन चिंतन, बाबा से बातें, तन और मन दोनों की तंदुरुस्ती के लिए 4 घंटे हरेक को अपने लिए निकालने चाहिए। और शाम के समय भी 6 से 10 का जो समय है, अगर बहुत ऐसा कोई बिजी है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो अटेंशन रखे तो ये नमाज शाम का समय भी अपनी उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार अगर 8 घंटे का भी दिनचर्या के अंदर हम समय निकालें कि ये हम सब बाबा के लिए दे दें, सेवा लौकिक जवाबदारियां, लौकिक कार्य तो हैं, लेकिन ये बाबा के लिए विशेष, बाबा की, बाबा ने इस बारी सेवा के 3 स्वरूप और 7 साथ करने के लिए कहा है, अलग अलग नहीं। वाचा सेवा कर रहे हैं तो वाचा में बिजी हो गए, कर्मणा सेवा कर रहे हैं तो कर्मणा ही कर रहे हैं, या मनसा कर रहे हैं तो बैठ गए मनसा में, योग में, बाबा कहता नहीं बच्चे, तीनों सेवाएं साथ साथ हों, मनसा भी शक्तिशाली हो, अच्छे शुद्ध संकल्पों में रमण करने वाली हो, मन के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल हो, मन एकाग्र हो और बाबा के साथ जुटा हुआ हो, अपने आप मन अंतःवाहक बन करके अपनी सेवाएं करेगा, अन्य आत्माओं को अपनी शक्ति और सकाश देगा, अपने शांति के प्रकंपन फैलाएगा। अगर मन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है तो बाबा का चिंतन है, बाबा की स्मृति है, तो ये मन अपने आप मनसा सेवा करता है। और वाचा के द्वारा जो ज्ञान बाबा ने दिया है, व्यर्थ बातें बोलने के लिए तो सबके पास समय होता है और बहुत बोलते भी हैं, लेकिन अगर ध्यान है कि बाबा ने कहा वाचा सेवा करो, तो जो वाचा निकले वो ज्ञान युक्त हो, जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो सुनाया है, वही ज्ञान मुख से वर्णन हो, तो मनसा शक्तिशाली हो, वाचा से ज्ञान रतन निकले, हर आत्मा की उन्नति के बोल निकले। और कर्मणा में इस बार बाबा ने और शब्द ऐड किया, हर आत्मा को स्नेह दो, सहयोग दो। अगर हर आत्मा को हम स्नेह और सहयोग दे रहे हैं, लक्ष्य रखा है कि कुछ भी हो मुझे सहयोगी बनकर रहना है, तो ये तीनों सेवाएं एक साथ हम करते चलें, तो मन और बुद्धि बिजी रहेगा और हमारा समय सफल होगा। तो तन मन धन, धन को भी बाबा ने इस बार प्रयोग करने की विधि बताई है। आज वरदान में कहा है कि बच्चे धन को भी कम खर्चे से अच्छा काम करके दिखाओ। कई कार्य ऐसे होते हैं जहां खर्चे बहुत कर दिए जाते हैं और काम अच्छा नहीं होता, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी योग की कमी है। योगी आत्माएं जो बाबा की याद में रहती हैं, जिनके सर्व संबंध बाबा के साथ हैं, उनको धन भी सफल करना आता है, व्यर्थ नहीं जाने देते, एक का 10 गुना करके दिखाते हैं। तो हमारा एक का 10 गुना कैसे बनेगा, ये भी कर्म फिलॉसफी बाबा ने सिखाई है कि धन भी कहीं पर भी व्यर्थ न जाए, कि ये धन प्रभु की अमानत है। आप कहेंगे कमाई मैंने, मेहनत हमने की, और ये प्रभु की अमानत कैसे है? हम सब ने कहा है हे प्रभु, हे बाबा, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, जो तूने दिया है तेरे को अर्पण है। भक्ति के अंदर आरती गाई, लेकिन वो तो झूठी आरती गाली, दिया नहीं भगवान को कुछ भी, कह दिया सिर्फ। और अभी वो आया है डायरेक्ट, कहता है बच्चे जो तुम कहते हो, जो आज बाबा ने कहा, जो सोचते हो करके दिखाओ, ऐसे नहीं सोच लिया कुछ और कर लिया कुछ। कई लोग कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं, और कई सोचते ही रहते हैं करते नहीं है। तो बाबा हम सबको कहता है बच्चे जो सोचते हो करो। अगर शुभ संकल्प आता है, अच्छा संकल्प आता है कि बाबा के कार्य में मैं ये सफल करूं, अच्छा संकल्प आया ना, जैसे आप यहाँ देखेंगे इतना सारा कार्य चल रहा है, इतने मकान बन रहे हैं, बच्चों के रहने के प्रबंध किए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा मुकरी माता का स्थान बन रहा है, आप लोग जा करके चक्कर लगा सकते हो, देखना 5,000 भाई बहनों की रहने की व्यवस्था हो रही है, कि और बाबा के बच्चे वृद्धि को पाएंगे, कहाँ बैठे, बैठ तो जाएंगे, हाल में रहेंगे कहाँ, तो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, बहुत जोर शोर से कार्य चल रहा है, इधर ट्रेनिंग सेक्शन बन रहा है, और भी कई कार्य बाबा के गुप्त रीति से बाबा के बच्चों के लिए बन रहे हैं। तो कईयों को उमंग आता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन सोचते रहते हैं, करने की प्रेरणा अंदर से आती है, बाबा टच भी करता है, बच्चे सफल करो, ऐसा न हो। एक कहावत है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए किसकी जलाए आग। तो ऐसा न हो कि अगर है, भले मेहनत से कमाया है हमारे पास, तो बाबा कहता बच्चे वो पड़ा न रह जाए, बैंक में न रह जाए, चोर न ले जाए, टैक्स न लग जाए, उसको सफल कर लो। वो बाबा के कार्य में अगर लग गया तो एक का कई गुना होकर के बाबा उसका रिटर्न करेगा। तो हम कहां तक दिल के प्यार से, सच्चाई से, कहने से नहीं, कोई कहे, बहने कहे, निमित्त टीचर्स कहे, कि आपको ये करना चाहिए, फिर किया, तो करने का अलग भाग्य बनता है। करके कहना, कोई कहे फिर करना, उसका कुछ हिस्सा उसको प्राप्त हो जाता जो कह के कराता है। लेकिन अगर कोई के अंदर है और सच्चे दिल से गुप्त रीति से बाबा के कार्य में मदद करता है, तो गुप्त रीति से संगम पर इस समय बाबा कहता है डायरेक्ट मेरा पाठ चल रहा है। और डायरेक्ट जो बच्चे सच्ची दिल से बाबा के कार्य में मदद करते हैं, उनको एक का कई गुना होकर के इसी जन्म में, भविष्य तो बनेगा ही लेकिन कईयों का अनुभव होगा कि इसी जन्म में उसकी कई गुना होकर के प्रारब्ध प्राप्त हो जाती। सबसे बड़ी प्रारब्ध प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है अंदर से गुप्त रीति से खुशी, दुआएं, और उन खुशी और दुआओं के आधार से योग बहुत सहज हो जाता है। वैसे योग लगाने की आप मेहनत करते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं परम धाम निवास, चिंतन करते रहो, मेहनत लगेगी, कभी लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास गुप्त रीति से परमात्म दुआएं, परिवार की दुआएं, सबकी दुआएं प्राप्त हो रही हैं, आपने कुछ पुण्य कर्म किया है, इन हाथों से किया है, शरीर से किया है, मन से किया है, धन से किया है, या संबंध संपर्क से किया है, या उमंग उत्साह बढ़ाया है, किसी भी प्रकार से अगर बाबा के कार्य में सहयोगी बने हैं, तो उसके रिटर्न में जो प्रभु दुआएं परमात्म स्नेह प्राप्त होगा, उससे आपका योग बहुत सहज हो जाएगा। तो योगी जीवन है, निरंतर योगी, सहज योगी हम बाबा के बच्चे बने, और जो योग कर रहे हैं उसका प्रयोग करें। ऐसे ही नहीं योग करते रहे संस्कार वैसे के वैसे। कई हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, वही आदतें, वही बुरा बोलना, मुख से वही कड़वे वचन बोलना। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं करते हैं तो क्या योग का प्रयोग किया है? अगर संस्कार वही के वही चल रहे हैं, माना योग हम कर रहे हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आज देखो हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर्स का एक कैंप चलता है जिसको कैड कहते हैं, हार्ट की बीमारी का। और उस हार्ट की बीमारी को कैसे ठीक किया जा रहा है? चीड़ फाड़ से नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। जो साइंस असंभव बात मानती है, वो कहती कभी आर्टरी ऐसे खुलेंगी नहीं बिना ऑपरेशन के। जो ब्लॉक हो गया, जहाँ खून का थब्बा बन गया, जम गया, वो खुलेगा कैसे? कोई ऐसी मशीन तो नहीं डाली जाएगी, या तो मशीन से खोला जाए। लेकिन प्रयोग किया गया तो रिजल्ट में देखा गया कि 500 ऐसे पेशेंट जो 100%, 90%, 80% जिनकी ब्लॉकेज थी, वो योग के प्रयोग से, एक्सरसाइज से और डाइटिंग से, तीन बातों से, भोजन की परहेज सिखाई गई, कुछ एक्सरसाइज बताई गई और साथ साथ राजयोग सिखाया गया। मेन राजयोग, मुख्य राजयोग था, और उससे 500 पेशेंट्स पर प्रयोग किए गए तो उसमें 90-80% सफलता मिली है। और उसके कारण प्रेसिडेंट बहुत खुश है, कहता आप सबको सिखाओ ये। तो ऐसा जब राजयोग के प्रयोग से स्थूल बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, आर्टरीज भी खुल सकती हैं, प्रयोग हुए हैं, हो रहे हैं, तो ये स्थूल बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपने सूक्ष्म संस्कार, जो कड़े संस्कार हैं, चाहे वो काम विकार का है, चाहे क्रोध का कड़ा संस्कार है, चाहे और भी कोई छोटे मोटे संस्कार रहे हुए हैं, अगर हम सभी योग का प्रयोग करें, बाबा की सकाश को लें, बाबा की किरणों को अपने पर एकाग्र करें, और जैसे सोलार एनर्जी को एक जगह एकाग्र करके फिर फोकस करते हैं, तो कहीं पर भी कागज भी जल जाए, कहीं अग्नि जल जाए, तो ऐसे ही अगर हम बाबा की शक्तियों को, बाबा की किरणों को स्वयं पर एकाग्र कर लेते हैं और फिर वो फोकस करते हैं, तो संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन साधारण योग से नहीं। इसलिए बाबा कहता है योग तुम्हारा ज्वालामुखी चाहिए, बहुत शक्तिशाली याद चाहिए। ऐसी याद हो एक बाबा दूसरा न कोई, सब संबंध एक बाबा से हो, तो वो याद ज्वाला स्वरूप बन जाएगी। और उससे हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, हमारे विघ्न हटेंगे, संबंधों में रुकावट होगी वो बदल जाएगी। अगर कोई प्राकृतिक या सामाजिक रूप से कोई परिस्थिति, कोई विकट समस्या होगी, कोई विघ्न होगा, उसको भी टाल सकते हैं। लेकिन योग की शक्ति का हम बार बार प्रयोग करें, हर स्थान पर प्रयोग करें। तो आज बाबा ने कहा खजानों पर प्रयोग करो और साथ साथ अपने संस्कारों पर, अपने संबंधों पर, विघ्नों पर, प्रकृति के ऊपर, अन्य आत्माओं के ऊपर, जहां जरूरत है उन आत्माओं पर अगर हम प्रयोग करना सीख लें। यहां सीख करके जाना, जब एकांत मिलती है ऐसे बाबा की याद में बैठो, एक लगन में मगन होकर के बैठो, जो शक्ति इमर्ज हो और वो शक्ति अपना कार्य प्रारंभ करे। ठीक है, तो सभी बाबा के बच्चे योगी स्वप्रयोगी बन करके अपने आप पर प्रयोग करो और अन्य आत्माओं को योग की शक्ति से मदद दो। तो बाबा अभी हम सबसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे अगर तीनों प्रकार की कंबाइंड सेवा शुरू करें, मनसा वाचा और कर्मणा की साथ साथ, तो जल्दी से जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति।